ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा। तो आज प्रातः भागवत कक्षा में आए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, और विशेष रूप से हम स्वागत करेंगे हमारे बीच में उपस्थित इस गए विश्व रूप प्रभु का। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी के अनलिमिटेड ग्लोरीज हैं। प्रभु जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो इतना डिटेल में प्रभु जी ने इतनी सारी सेवाएं की हैं भक्तों के लिए, भक्त समाज के लिए, जो कि पूरे विश्व में भक्तों को लाभ प्रदान कर रही है। प्रभु जी सन 1983 में इस्कॉन से जुड़े। सन 1984 से प्रभु जी ने 16 माला का जप करना प्रारंभ कर दिया। 1986 में प्रभु जी का प्रथम इनिशिएशन हुआ परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज से। उसके बाद से प्रभु जी ने इस्कॉन चौपाटी और कई सारे अन्य स्थानों पर बहुत सारी मेडिकल फील्ड में, खासकर बहुत सारे लोगों को सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज ही नहीं, साथ साथ आध्यात्मिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किया, जिसके कारण बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे नर्सिंग डिपार्टमेंट के स्टाफ और बहुत सारे लोग भक्ति से जुड़े। आज वो अपना मेडिकल प्रोफेशन भी अच्छे से कर रहे हैं और साथ साथ लोगों को भक्ति में भी जोड़ रहे हैं। प्रभु जी ने इंडिया, इंडिया के बाहर सऊदी अरेबिया और इंडिया में खासकर ऋषिकेश वृंदावन में प्रभु जी ने काफी समय तक सेवा की, जहां पे लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज के साथ साथ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की, जिससे वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ पाए। और प्रभु जी ने फिर उसके बाद भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में बहुत सारी विशेष सेवाएं की। प्रभु जी के प्रयास से आज वो हॉस्पिटल इतने सारे लोगों को भक्त बना रहे हैं, जो वहां पर ट्रीटमेंट के लिए भक्त लोग आते हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज तो मिलती हैं, साथ साथ इतना बढ़िया स्पिरिचुअल केयर मिलता है, जैसे कि बहुत सारे रोगी जो वहां से ठीक होकर जाते हैं वो भक्त बन जाते हैं। और अभी प्रभु जी इस्कॉन चौपाटी मंदिर में भी बहुत समय से बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि आज प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो प्रभु जी के मुखारविंद से हम लोग कथा सुने और इसका लाभ उठाएं। आप सबसे निवेदन है कि कृपया करके अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड या स्विच ऑफ में कर दें, ताकि हम ये कथा निर्विघ्न पूर्वक सुन सके।
जी प्रश्न ये है कि इसमें तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो सब पढ़ा जाए कि थोड़ा पढ़ा जाए, कैसा लगता है? हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के दूसरे अध्याय से पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति, और श्लोक क्रमांक है 26। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतस्य त्यनेत्रं सॉरी सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम् निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। बोलिए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम तस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना।
ऋतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यम त्रिसत्य नेत्रम सत्यामृतां च शरणं प्रपन्न.
हरे कृष्ण.
परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यमृतं सत्यपरं सि सत्यम् स योनिनिहितं च सत्यम् सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न.
सत्यव्रतम्, भगवान जो अपने व्रत से कभी विचलित नहीं होते. सत्य परम, परम सत्य श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है. सत्यम परम धीमही त्रिसत्यम, वे इस जगत की सृष्टि पालन तथा इसके संहार के बाद में परम सत्य के रूप में विराजमान रहते हैं. सत्यस्य परम सत्य कृष्ण से उद्भूत सारे सत्यों के योनिम कारण निहितम प्रविष्ट च तथा सत्ये इस जगत को उत्पन्न करने वाले कारणों यानी पंच तत्वों के द्वारा क्षिति जल पावक गगन समीर. सत्यस्य सत्य माने जाने वाले को सत्यम भगवान जो आदि सत्य है. वृत सत्य नेत्रम अच्छे लगने वाले सत्य के उद्गम. सुनेत्रम सत्य आत्मकम भगवान से संबद्ध हर वस्तु सत्य है, सच्चिदानंद है. त्वाम तुम्हारी हे भगवान. शरणम शरण में प्रपन्नाः आपके संरक्षण में हम सभी शरणागत. तो अनुवाद इस प्रकार से है. देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते और आपका व्रत सदा ही पूर्ण रहता है क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वो पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता. सृष्टि पालन तथा संहार जगत की इन तीन अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य हैं. कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वो पूरी तरह आज्ञाकारी न हो. अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते. आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य है, इसलिए आप अंतर्यामी भी कहलाते हैं. आप सबों पर समभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं. आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक व्यक्ति पर लागू होते हैं. आप आदि सत्य हैं, अतः हम आपको नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं. आप हमारी रक्षा करें. श्री कृष्ण भगवान की. तात्पर्य, देवता या भक्तगण भली बाती जानते हैं कि चाहे ये भौतिक जगत हो या वैकुंठ लोक, असली वस्तु तो भगवान ही है. इसलिए श्रीमद् भागवत का आरंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमही से होता है. वासुदेव कृष्ण ही परम सत्य है. परम सत्य तक परम विधि द्वारा ही पहुंचा जा सकता है और जैसा कि परम सत्य ने घोषित किया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच्चास्मि तत्वतः भगवत गीता 18वां अध्याय 55वां श्लोक। परम सत्य को समझने का एकमात्र ढंग है भक्ति। इसलिए देवतागण अपनी रक्षा के लिए परम सत्य की शरण में आते हैं, सापेक्ष सत्य को नहीं। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु परम सत्य कृष्ण ने भगवान भगवत गीता में कहा है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेदसाम। अल्पज्ञ लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा सीमित समय के लिए लाभदायक होती है, किंतु परिणाम नाशवान होता है। यह संसार नश्वर है और देवता भी नश्वर है। देवताओं से प्राप्त होने वाले वर भी नश्वर होते हैं, जबकि जीव शाश्वत है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। इसलिए हर जीव को नश्वर सुख नहीं अपितु शाश्वत सुख की खोज करनी चाहिए। सत्यम परम धीमहि सूचित करता है कि मनुष्य को सत्य की खोज करनी चाहिए, सापेक्ष सत्य की खोज नहीं करनी चाहिए। भगवान नरसिंहदेव ने उनकी प्रार्थना करते हुए भगवान नरसिंहदेव की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा था, बालस्य नेह शरणम प्रीतम नृसिंह नातस्य चागद मुद्भवन्ति मज्जतो नौ। सामान्यतया ये समझा जाता है कि बच्चे के रक्षक उसके माता पिता होते हैं, किंतु ये यथार्थ नहीं है। असली रक्षक तो पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। तप्तस्य तत्त प्रतिविरुद्ध इहाजयेष्टम तप्तस्य तत् प्रति विधीर्य इहांजयेष्टम तावद विभो तनुभृताम त्वदुपेक्षितानाम। यदि किसी बालक की उपेक्षा भगवान द्वारा होती है तो अपने माता पिता को माता पिता के होते हुए भी कष्ट भोगता है। इस तरह रोगी व्यक्ति सारी चिकित्सा होने पर भी मर जाता है। इस भौतिक संसार में यह जीवन संघर्ष चल रहा है। लोगों ने रक्षा के अनेक साधन ढूंढ निकाले हैं, किंतु यदि भगवान इनका तिरस्कार कर देते हैं तो ये व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए देवताओं ने जानबूझकर कहा, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे प्रभु, आप ही हमारी असली रक्षा कर सकते हैं, अतएव हम आपकी शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो तात्पर्य हम यहां पर रोक देते हैं, लेकिन बहुत सुंदर तात्पर्य है, आप जरूर आज उसको पढ़िए। तो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे समय हरे कृष्णा, आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे आपके बीच में बैठने का मौका दिया। हम बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है। मनुष्य के जीवन की कई उपलब्धियां हैं, भाग्य हैं, उसमें से एक है श्रीमद् भागवत, क्योंकि श्रीमद् भागवत हमें प्रत्यक्ष भगवान से जोड़ता है और सबसे सीधे और सबसे श्रेष्ठ मार्ग से जोड़ता है। मार्ग श्रेष्ठ भी है और सबसे साधा सिंपल भी है, कठिन भी नहीं। और जिस शुद्ध भक्ति से भगवान हमसे हम पर आकर्षित हो जाते हैं, वो शुद्ध भक्ति का प्रचार श्रीमद् भागवत करता है। श्रीमद् भागवत में कोई मल नहीं है, भौतिकता का कोई दिशा भूलता नहीं है, दिशा भ्रष्टता नहीं है। एक दिशा है वो परम भगवान के चरणों में, अन्य किसी प्रकार के कर्म कांड इसमें नहीं है, किसी प्रकार के विरक्ति के, केवल विरक्ति के विषय नहीं है। विरक्ति के विषय भगवान से जुड़े हुए प्राप्त किए जाते हैं। कोई फल की अपेक्षा करके ये सुना नहीं जाता है, सुनना नहीं चाहिए, ऐसा इसका गौरव करें इतना कम है। और उसमें श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का जो वर्णन है वो साक्षात श्री कृष्ण का चरित्र है। 79 अध्यायों में परम भगवान, परम पुरुषोत्तम, परात्पर भगवान, गोलोकेश्वर, सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण भगवान का दिव्य चरित्र, परम पावनदायी चरित्र, इसका वर्णन हमें इस अध्याय में, इस स्कंद में मिलता है। और श्री कृष्ण का चरित्र श्रवण करने से जितने भी कल्मश हम जानते हैं और जितने भी कल्मश हम नहीं जानते हैं वो सबका विनाश होता है। और हृदय के अंदर जो परम शुद्ध चेतना स्थित है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, वो जागृत हो जाती है, जो भगवान के विषय में अनुकूल होती है। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके श्रीमद् भागवत का अध्ययन श्रवण नहीं करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति जो अपने आप को मनुष्य समझता है उसे श्रीमद् भागवत का श्रवण और अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि बाकी तो मनुष्य जीवन में बहुत सारी चीजें कर लेते हैं जो जानवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य जीवन जिस लिए दिया गया है वो कार्य है भगवान का चरित्र श्रवण करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान के धाम में निवास करना, भगवान के विषय में चिंतन करना, उनके विषय में जीवन समर्पित करना, ये हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। और बाकी सारी चीज उसके साथ साथ चलती है अपने आप। तो हमारा परम सौभाग्य है कि अभी आज को आपको पहले से भी चल रहा है और आज से शायद 2 साल चलेंगे, हाँ, भगवान के दशम स्कंद के श्रवण में आप लोग मग्न रह सकते हैं। हमें याद है राधा गोपीनाथ मंदिर में जब दशम स्कंद शुरू हुआ था तो 2-2.5 साल इतना आनंद आया था, हर रोज भगवान के विषय में चर्चा, साक्षात, हाँ, सिद्धांत भी है लेकिन प्रत्यक्ष भगवान के विषय में उनकी कथाओं का श्रवण हो रहा है। तो अभी भगवान का आविर्भाव होने जा रहा है और ये मनुष्य जाति के लिए सर्वोच्च वरदान है। तो परम भगवान जो गौलोकेश्वर है, हाँ, एक भगवान है, एक सत्य है, परम सत्य है, जो गौलोक में निवास करते हैं अपने भक्तों के साथ, वो गौलोक को छोड़कर हमारे लिए यहां पर हमें संग देने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें वापस ले जाने के लिए इस भौतिक जगत में भी निवास करने का संकल्प करते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ, जिनको ठुकरा कर हम यहां पर आए हैं उन्हें कोई जरूरत नहीं है हमें यहां पर आके मनाने की, गिड़गिड़ाने की, चलो अब लौट चले, ऐसे कहने कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन एक ऐसा गुण है उनके अंदर, वो है परम करुणा। उस करुणावश वो सब कुछ छोड़कर हमें लेने के लिए आते हैं, इतना ही काफी है उनके प्रति ऋणी होने के लिए, कृतज्ञ होने के लिए, कि जिन्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। और वो व्यक्ति कौन है, किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, किसी पृथ्वी के अध्यक्ष नहीं है या ब्रह्मांड के अध्यक्ष नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड भौतिक सृजन और पूरा आध्यात्मिक सृजन, अनंत वैकुंठ लोक, द्वारका, मथुरा, अयोध्या, गौलोक, वृंदावन, ये सर्व सृजन के निर्माण के वो एकमेव अधियंता है, एकमेव मालिक है, स्वामी है। इतना बड़ा पद इस पूरे निर्माण में किसका नहीं है, शाश्वत है। लेकिन उनके व्यक्तित्व में, उनकी महानता के सामने करुणा जो है वो उससे भी महान है। उनके जितने भी ऐश्वर्य हैं, उन सभी ऐश्वर्यों में उनकी जो करुणा है वो सब बाकी ऐश्वर्यों को क्या कहते हैं, वो परास्त कर देती है। वी कॉल इट ओवरवेल्म्स, कंपैशन ऑफ कृष्णा ओवरवेल्म्स इज ऑल द अदर क्वालिटीज। और वो हमारे हित में है, क्योंकि अगर वो करुणावान नहीं होते और बैठे रहते कि तुमने आपको छोड़ दिया, जाओ अभी तड़पो वहां पर, जब योग्य हो जाओ तो लौट के आना, मेरा आपका कोई संबंध नहीं, आपने छोड़ दिया है। ऐसा अगर कहते तो चिरंत काल तक भौतिक दुनिया में रहते, लेकिन ये उनकी असीम करुणा है। निमित्त कोई भी हो, पृथ्वी गाय के रूप में गई हो, देवता लोग परेशान है, वो क्षीर सागर किनारे पुकार रहे हैं, वो बहुत सारे निमित्त हैं, उसके अपने अपने उद्देश्य भी हैं उसमें, लेकिन परम उद्देश्य जीव की करुणा का है। इसलिए इस भौतिक जगत में जो जन्म मृत्यु से बना हुआ है, हाँ, उसका स्वरूप स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें आदि भौतिक कष्ट है। अभी गर्मी तड़प तड़पा रही है, बाद में सर्दी तड़पाएगी, जंगल में आग लगेगी, जैसे हिमालय में अभी दो जगह लग रही है, कई प्रकार के संकट आते रहेंगे। ऐसे संकट की पीड़ा की जगह पे जहां हम लोग सब तड़प रहे हैं, वहां भगवान आते हैं, हमारे बीच में आते हैं। इस तरह से एक तरह से वो हमारा मुंबई में जेल है, ऑर्थर रोड जेल, वो सबसे खतरनाक गुंडे उसमें रखे जाते हैं, हाँ, उसको अंडा सेल कहते हैं। उनके बीच में अगर आपको समझे कहा जाए कि घंटा बिताओ, तो कैसा लगेगा आपको? आपको लगेगा कि ये कौन से पाप का फल भोग रहा हूं कि मैं इनके बीच में मुझे एक घंटा बिताने जा रहा है, बिताना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे हम लोग गुनेगार रहे हैं, जो उनका साम्राज्य, उनका आधिपत्य, उनका सेवा छोड़कर हम लोग यहां पर आए हैं, और अपने कर्मों से और कर्म और पाप कर्म करते हुए भयंकर दुख भोग रहे हैं, और ऐसे गुनहगारों के बीच में वो आते हैं उनको सहारा देने के लिए। कथा बहुत सुंदर है, ऐसा मत समझना कि इसमें से कुछ लोग हम स्किप कर सकते हैं, वो प्रार्थनाएं हैं तो उसको क्या पढ़ना है, भी बहुत सारी, एक दो प्रार्थना पढ़ ली आगे जाएंगे, अभी कथा में रोचकता नहीं आती है बहुत सारी प्रार्थना सुनने पर, लेकिन हर एक श्लोक महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि सुखदेव जी जब परीक्षित महाराज को ये कथा कहने के लिए बैठ रहे हैं, उनके पास तो केवल 7 दिन का समय था बताने के लिए, तो सागर ज्ञान का सागर तो अथाह है, वो तो महीना भर भी बता सकते हैं। जैसे बड़े फुर्सत में भगवान ने उद्धव जी को बताया, 11वें स्कंद में पढ़ते हैं, कोई समय की पाबंदी नहीं है, बोलते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, समय वाले, सुनने वाले को भी बहुत समय है और कहने वाले के लिए भी बहुत समय है, कोई बाधा नहीं। लेकिन यहां पर था समय का पाबंदी, 7 दिन के अंदर जो भी महत्वपूर्ण है वो बताना है, और कुछ छोड़ना नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं है, है, और कुछ ऐसा बताना नहीं है जो उसमें समय का क्या कहते हैं उसको, व्यय हो जाए, बेकार में समय चला जाए। तो सुखदेव जी ने सोच समझकर ही बताया है जो 7 दिन के समय में बैठता है और सुनाना चाहिए, नहीं तो वो उसको स्किप कर देते। उन्होंने कई चीजें स्किप कर दी। कैसे? वृंदावन में हर रोज एक राक्षस आता था मथुरा से, और हर रोज मध्यान्ह के समय भगवान उसका वध करते थे, उसके बाद जमुना जी स्नान करते थे, उसके बाद भोजन करते थे जमुना जी किनारे बैठ के। लेकिन सुखदेव जी ने कितने राक्षसों का वर्णन किया है? प्रधान प्रधान राक्षसों का। हाँ, 6वें दिन पे राक्षसी आई थी, 3 महीने के बाद चक्रासुर आया था, 1 साल के बाद में तृणावर्त आया था, और उसके बाद में ऐसे बहुत समय के बाद में उन्होंने प्रधान प्रधान राक्षसों का वर्णन किया है, लेकिन रोज वाले राक्षसों का वर्णन नहीं किया है क्योंकि समय कम था। तो उन्होंने वो निर्णय लिया है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इसमें है, 18,000 श्लोकों का जो वर्णन दिया है, वो हमारे लिए हर एक शब्द महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका आदर करते हुए इस पर चिंतन करना चाहिए। तो इस श्लोक में प्रधान रूप में देखा जाए सत्य इस विषय पर चर्चा की गई है। हमारा जीवन जो है वो असत्य पर आधारित है, जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनते तब तक। और असत्य क्या है कि जो शाश्वत नहीं है उसको हम शाश्वत मानते हैं, वो हमारे जीवन का आधार है, समझते यही जीवन है, यही रहना है, और मरने के बाद भी यही आना है, हाँ, यही हमारा सब कुछ बेस है, यहीं पर रहना है, और ये सब नॉर्मल है, ये मृत्यु भी नॉर्मल है, ये जन्म भी नॉर्मल है, ये बीमार होना भी स्वाभाविक है और बूढ़े होना भी स्वाभाविक है, ये तो सब नेचुरल है, उसमें क्या दुख करने की बात है। इन सब चीजों को मानना इस तरह से उसको असत्य कहते हैं, और हमारा पूरा जीवन असत्य पे आधारित है जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते। और भगवान नित्य है, भगवान सत्य है और भगवान नित्य है। युधिष्ठिर महाराज महाभारत में धर्म की व्याख्या करते हैं, भीष्मदेव भी व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं अनित्य का त्याग करना और सत्य के ऊपर जीवन का अधिष्ठान बनाना और सत्य के ऊपर ही जीवन को चलाना, इसको धर्म कहते हैं। सिंपल व्याख्या, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और नित्य वो है जो भगवान द्वारा प्रणीत है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, और भगवान जो प्रणीत करते हैं वो सत्य होता है। उस पर चलने का जीवन जो है वो सत्य जीवन है, उसके अलावा जीने का जीवन जो है वो असत्य जीवन है, और वो असत्य होने के कारण अनित्य भी हो जाता है, अशाश्वत हो जाता है। और सत्य के ऊपर बहुत सारा वर्णन किया है, छोटे समय पर वर्णन करना मुश्किल है, लेकिन सत्य भगवान है इतना भी समझ में आए तो वे काफी है। देवता लोग बड़े विद्वान है, वो सत्य की इतनी परिभाषाएं करते जा रहे हैं, एक एक सत्य के विषय में अलग अलग साक्षात्कारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहां पर हमें उसका निचोड़ समझना जरूरी है कि सत्य जो है वो परम भगवान है, परम भगवान सत्य है, सत्य परम भगवान है, और वही एक चीज हमें जीवन में स्वीकार करनी है और उसके संबंधी चीजों को स्वीकार करनी है, और जो उसके संबंध में नहीं है उन सबको त्याग करना है। रूप गोस्वामी भी इस वैराग्य का ये वर्णन करते हैं, तो भगवान के भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना, और जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, जो प्रतिकूल है, उसको त्याग करना। सिंपल, उसके लिए सन्यासी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ होने की कोई जरूरत नहीं। जैसे भी हो, जहां पर भी आप हो, जिस भी आश्रम में हो, अगर इस बात को समझते हैं कि जहां पर भी हमें, जिस आश्रम में है, भले गृहस्थ आश्रम में है, अगर भगवान के भक्ति के अनुकूल चीजों को स्वीकार करते हैं और भगवान की भक्ति को जो प्रतिकूल उसको त्याग कर देते हैं, तो सबसे बड़े वैरागी आप ही हैं। उसके लिए गेहुआ वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैराग्य विरक्ति एक कंसेप्ट है, वो कोई बाह्य चेतना नहीं है कि कौन सा वस्त्र पहनते हैं, कैसे हेयर स्टाइल लगते हैं, कितना लंबा शिखा है, कितना छोटा शिखा है, इस पर वैराग्य की प्रचीति नहीं हो सकती है। तो वो देवता हमें यहां बता रहे हैं, देवताओं का क्या विशेष गुण है यहां पर, कि कई बार हमें देवता ऐसे गलत काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, फिर पश्चाते भी है, फिर कुछ प्रार्थना करते हैं, फिर वो पश्चाताप करते हैं। बहुत सारी चीजें भागवत में भी आई हैं, बाकी शास्त्रों में भी आई हैं, लेकिन देवताओं का एक विशेष गुण है जो भगवान को बहुत भाता है, वो है किसी भी स्थिति में, चाहे उनकी भोग की स्थिति हो, या चाहे उनके संकट की स्थिति हो, चाहे उनकी गलती की हुई स्थिति हो, वो हर चीज स्थिति में भगवान को ही शरण कर रहे थे। ये उनकी विशेष बात है। और राक्षस लोगों का स्वभाव क्या है, वो किसी भी स्थिति में भगवान से विपरीत रहते हैं, चाहे उनकी समृद्धि की स्थिति हो, उनके संकट की स्थिति हो, उनके कष्ट की स्थिति हो, उनके आनंद की स्थिति हो, वो भी किसी का कल्याण करते होंगे, कभी किसी को धन देते होंगे, किसी को सारे सहायता करते होंगे, लेकिन सारे अच्छे बुरे कार्यों में उनकी चेतना क्या होती है, भगवान से विरुद्ध, भगवान से विपरीत। इसलिए अनंत गलतियां करने के बाद भी भगवान जो है वो देवताओं की सहायता करने को आते हैं। इंद्र ने कितनी गलतियां की हैं, सबने की है, लेकिन फिर भी भगवान उनका ही सहारा देते हैं। हम सोचते हैं अरे इतना गलती करने के बाद भगवान के खिलाफ भी गलती करते हैं कभी कभी, फिर भी उनको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि उनकी मूल चेतना जो है वो भगवान के, क्या कहा है, त्वाम शरणम प्रपन्नाहा, इस चेतना को वो छोड़ते नहीं कभी। और देवताओं में एक विशिष्ट बात है, जैसे ही भगवान आ रहे हैं, आने वाले हैं, ऐसी सूचना मिलती है, तुरंत अपने आतुरता से भगवान को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। उसको कहते हैं ईगरनेस, उसको रूप गोस्वामी ने कहा है लौल्यम। और वो कहते हैं कि ये लौल्य जो है वो भगवान की प्राप्ति करने के लिए कीमत है जो हमको चुकाना चाहिए। सरप्राइज टू अचीव लव एंड डिवोशन टू गॉड, भगवान से प्रेम और भक्ति प्राप्त करने के लिए ये लौल्य एक कीमत है जो हमको चुकाना चाहिए, जो हम चुका सकते हैं, उसकी क्षमता भगवान ने हमको दी है। तो ये लवले जो है वे भगवान के प्रति अभी वो प्रकट करने जा रहे हैं। ये देवताओं का ये गुण हमें बहुत स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे मन में, हमारे चेतना में, हमारे अंदर आतुरता नहीं है भगवान के लिए, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे अंदर आतुरता है लेकिन वो भोग के लिए, हम बड़ा प्रयास करते हैं, कभी कभी विचार भी नहीं कर सकते इतना प्रयास करते हैं, बियॉन्ड इमेजिनेशन, क्योंकि हमारे अंदर वो आतुरता है भोगने की, भौतिक दुनिया के विषयों को भोगने की हमारे अंदर आतुरता है, इसलिए हम लोग इतने लगन से लगे रहते हैं। हमारे परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज कहते हैं कि जितनी लगन और जितनी आतुरता हमें भौतिक विषयों को भोगने में है, उतनी ही आतुरता और लगन अगर भगवान में हो जाएगी तो जीवन सफल हो जाएगा हमारा। और आपके लिए कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, उसका प्रमाण क्या है, उसका ग्रेड क्या है, कौन सा ग्रेड को हमको पहुंचना है, नहीं। हमारे अंदर ही भौतिक दुनिया के भोगों को भोगने के लिए जो आतुरता है, वही अगर भगवान में स्थित की जाए, भगवान के लिए स्थित की जाए, तो और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि हमें खाने में कितना आतुरता है, हमें शरीर का सुख भोगने में कितनी आतुरता है, हमें सोने में कितनी आतुरता है, हमें अपनी स्वयं की प्रशंसा करने में कितनी आतुरता है, प्रशंसा सुनने में कितनी आतुरता है, हमें द्वेष कितना है, ये सब हम जानते हैं अंदर से। हमसे भला हमारे बारे में अच्छा और कोई जान न सकता है, और दूसरे हैं भगवान, बीच में गुरु जी। तो कितना भगवान पर प्रेम करना है ये आपको जानना है, तो आपको सोचना है कि मुझे कितना विषयों पर प्रेम है, उतना ही प्रेम भगवान पे करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो देवता लोग यहां पर एक तो संकट आते ही पहले भगवान को जाके मिलते हैं और कुछ नहीं करते हैं, यहां वहां नहीं जाते, कुछ भी संकट आया तुरंत क्षीर सागर किनारे पहुंचते हैं। और उन्हें हमेशा इस शरणागति का कार्य करने से हमेशा उनको एक पॉजिटिव मैसेज मिलता है भगवान से। कभी सुना आपने कि देवता लोग क्षीर सागर किनारे गए, भगवान ने कहा चला जाओ यहां से, अभी मैं नहीं आ सकता, जो करना है कर लो। कभी ऐसे हुआ नहीं, जब भी गए, जब भी प्रार्थनाएं की है, जब भी पुरुष सूक्त गाया है, तब भगवान का संदेश आया है। वे प्रत्यक्ष आए हैं, कभी हृदय में संदेश भेजा है कि डोंट वरी। सबसे पहले कहते हैं मां शुचः, चिंता नहीं करना, मैं आ रहा हूं, और मैं आ रहा हूं, और मेरे आने के समय पे आपको क्या क्या करना है, पूरा डिटेल इंस्ट्रक्शन देते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मुझे क्या करना है, अभी आएंगे तो मैं क्या करूंगा, सबको बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या सेटिंग बनानी है, और किस सेटिंग में मैं आऊंगा, उसके बाद में क्या करना है, सब बता देते हैं। हर एक अवतार के बारे में बता देते हैं। जब भी राम के विषय में जो जब भी आना हुआ, तभी राम के आने के पहले कहां कहां देवताओं को जाना है, उसका भी वर्णन किया। चैतन्य महाप्रभु के समय पर तो सबसे बेस्ट व्यवस्था थी, सभी भगवानों के जितने भी भक्त हैं वो सब लोगों को इंस्ट्रक्शन था क्या करना है आपको। श्री कृष्ण भगवान के विषय में भी वृष्णि वंश, कुरु वंश, यादव वंश, कहां कहां जाना है, सब देवताओं को आदेश दिया गया था, और फिर भगवान को रिसीव करते हैं। और जैसे भगवान आ रहे, देखो क्या विशेषता है भगवान की, जेल में क्यों आ रहे हैं वो, एक तरह से प्रतीकात्मक हमारे लिए सोचना है कि हम जेल में हैं तो मैं भी जेल में आ रहा हूं आपके लिए, जहां पर आप है वहीं आ रहा हूं। जो वो गर्भ अवस्था में जो कष्ट होता है ना, सब सब जीवों को पता है, लेकिन हम भूल जाते हैं आने के बाद में। सबसे परम कष्ट जो है वो जो गर्भावस्था में होता है, इतना संकुचित जगह पर, इतने अंधकार में, इतने सारे जीवों के बीच में उनका काटना सहन करते हुए, माँ के द्वारा जो भी गलतियां अच्छे काम हो रहे हैं उसका डायरेक्ट परिणाम भोगते हुए, बड़ा हो रहा है साइज और अंदर की जगह बड़ी हो रही है लेकिन वो भी सीमित है, तो जीव पुकारता है भगवान को, प्लीज मुझे माफ कर देना, अगली बार मैं जब बाहर आऊंगा तो वापस वो गलती नहीं करूंगा जो पहले की थी मैंने, मुझे छुटकारा पाओ, दिलाओ यहां से, प्लीज रिलीज मी, मैं वादा करता हूं आपको कि मैं दोबारा नहीं गलती करूंगा, आपके चरणों में रहूंगा। बहुत तड़पता है, सातवें महीने में, आठवें महीने में जीव बहुत तड़पता है, क्योंकि उसकी पूरी अनुभूति, पूरी चेतना जो है ना वो डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है, और वो विकसित हमारे आप जैसा ही है वो, लेकिन अंदर सिकुड़ के बैठा हुआ है, और वो याचना करता है प्लीज सेव मी। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि भगवान भी जेल के अंदर जन्म देने आ रहे हैं। लेकिन देखिए आप देवकी की अवस्था देखिए, जब भगवान आ रहे हैं, आ गए हैं उनके गर्भ में, सबसे पहले तो वो परम सुंदरी हो गई, पहले से परम सुंदरी थी, लेकिन जब भगवान मन में और बाद में गर्भ में स्थित हो गए तो वो दिव्य सुंदरी हो गई, इतनी दिव्य सुंदरी हो गई कि उसका प्रकाश जो है वो देखकर सब दानव और सब भक्त दोनों ही समझ गए कि इसके गर्भ में कोई दिव्य व्यक्ति है, और बाकी लोगों को जानकारी थी कि भगवान आने वाले हैं, तो सबको ये एक तो था श्रवणीय ज्ञान जो सुनकर जानते थे कि आने वाले हैं, और एक प्रत्यक्ष इस प्रकाश का दर्शन कर रहे हैं, उस प्रकाश की अनुभूति कर रहे हैं, और ये जान रहे हैं स्वयं साक्षात्कार के रूप में कि भगवान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में यहां विराजमान है। तो आचार्यगण बताते जैसे ही भगवान की चेतना भी हमारे अंदर आती है, भगवान का स्मरण के रूप में, भगवान के नाम के रूप में, भगवान के चिंतन के विषय में रूप में हमारे अंदर किंचित मात्र से भी वो आती है तो हमारा सौंदर्य बढ़ जाता है। हमने ऐसे कई अफ्रीकन लोगों को देखा है जो सामान्य हमारा जो सोचने का तरीका है उससे बहुत कुरूप होते हैं ना वो। उनका रंग देखिए, उनके बाल देखिए, उनका चेहरा देखिए, उनका नाक देखिए। लेकिन हमने देखा है कि ऐसे काली त्वचा वाले लोग भी जब हरे कृष्ण में भक्त बन जाते हैं तो उनके उस चेहरे पर भी एक अनोखा तेज निर्माण होता है। जो डीटी वर्शिप करते हैं, मैंने देखा है टोवाको में, हाँ न्यू जर्सी में, कहाँ से, घाना से, साउथ अफ्रीका से लोग आते हैं, फिर पहले भक्त बनते हैं, फिर उनको ब्राह्मण दीक्षा मिलती है, ब्राह्मण का सारा जीवन वो अपनाते हैं सारे नियमों के आधार पर, और भगवान की पूजा करते हैं। उनके चेहरे पर आप तेज देखिए, हम शायद गोरे गोरे होंगे लेकिन हमसे भी अधिक तेज उनके चेहरे पर है। वो रंग का या आकार का तेज नहीं है, वो भगवान को स्वीकार करने के बाद भगवान की दिव्यता का तेज है वो। इसलिए भक्त अगर भौतिक दृष्टि से कितना भी कुरूप दिखाई पड़ता हो, उसके फीचर सही जगह पर नहीं हो, लेकिन भगवान की भक्ति अपनाने से ही उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है, दिव्यता आ जाती है। और वो दिव्यता जो है ना, उसको कभी कभी लोग ग्लो कहते हैं, ग्लो तेज कहते हैं, आभा कहते हैं, ऑरा कहते हैं। उस वो कितना प्रभावी है, कितना भगवान को आपने स्वीकार किया है, उतनी वो ऑरा जो है, वो आभा जो है प्रभावी हो जाती है। उसको उसके आधार पर लोग हम पर हमसे आकर्षित हो जाते हैं और भक्ति को स्वीकार करते हैं। और कठिन समय भी जीवन में चलता होगा तो भी जितने हद पर हमने भगवान को स्वीकार किया है उतने हद तक वो आभा आप आपके चेहरे पर रौनक देती है और उतने लोगों को आकर्षित करती थी। तो ये देवकी की सौंदर्य का रहस्य है। वो भौतिकता से भी सुंदर सुंदर थी पहले से, लेकिन अभी दिव्यता उसके चेहरे में और व्यक्तित्व में प्रकाशित हो रही है। और जेल के अंदर भी देवताएं प्रवेश कर रहे हैं सूक्ष्म रूप में, दिव्य रूप में। ये देविका के जीवन का चिंतन कीजिए आप, कितना कष्ट सहन किया उसने। हर माता को उसको वंदन करना चाहिए, हर प्रभु को उसको वंदन करना चाहिए, कितना भगवान के लिए कष्ट सहन किया है। हद के बाहर नेत्रों के सामने हर एक बच्चे को कुचल कर पत्थर पर मारा जा रहा है, छिन्न विच्छिन्न करके नाश किया जा रहा है। इसको उसी गर्भ में पाला है, इसको कृष्ण को अभी पाल रहे हैं। लोग कॉमन सेंस के लोग कहते हैं अगर इतना कष्ट हो रहा है तो कॉमन सेंस था ना, उनको बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए था, तो ना बच्चा होता, ना उसको मारा जाता, ना कुछ होता। दिस इज कॉमन सेंस। लेकिन क्यों देवकी और वसुदेव बार बार जन्म दे रहे बच्चों को? क्योंकि उनको कहा गया था कि आठवें बालक के रूप में परम भगवान परात्पर गौलोकेश्वर श्री कृष्ण आने वाले हैं, तो उनका आगमन अगर होना है तो ये प्राइस तो चुकानी है। कितनी सुंदर चेतना है। और ये जो कीमत वो चुका रहे हैं भगवान के लिए, उसके उसका पूरे पूरे लाभ भी उनको बाद में मिलता है। इसका प्रमाण है कि देवकी ने इतने कष्ट सहे, इतना अत्याचार सहा, इतना उसके ऊपर कंस भाई होते हुए कितना उसको कठोर शब्दों से, कठोर कृतियों से उस पर अत्याचार किया गया, फिर भी वो लगी रही, दोनों लगे रहे। तो हम और आप उस स्थिति में होते तो हमारे मेडिकल साइंस में कहते हैं ट्रॉमा, हाँ, मेंटल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जो जीवन भर आपके साथ रहता है। इस तरह का टॉर्चर अगर आपको हो गया है तो जीवन भर में उस वेदना, उस आतंक के परिणाम आपके जीवन में दिखाई पड़ेंगे, आपकी कृति में, आपके व्यवहार में, आपके जिस तरह से आप पेश आते हो लोगों को। और देवकी को देखिए आप, इतना कष्ट सहन किया है, फिर बाद में जो सातवां काल गर्भ था वो गायब हो गया, जिसको हम एबॉर्शन कह सकते हैं, मिसकैरेज कह सकते हैं, वो भी एक प्रकार का दुख होता है, वो हम नहीं समझ सकते हैं। माताओं को पूछिए आप, जब उनके गर्भ से गर्भ नष्ट हो जाता है तो अभी पता ही नहीं कहां गया। अभी वो दिव्य स्तर पे कुछ कार्य हो रहा है लेकिन उनको पता नहीं क्या हुआ। पूरे मथुरा में खबर फैल गई कि मिसकैरेज हो गया, और फिर आठवां गर्भ में भगवान आते हैं। फिर भी सात गर्भों को खोने का दुख तो है ना। लेकिन जब कंस आता है और वहां पर कन्या को प्राप्त करता है और फिर कन्या को कुचलने का प्रयास करता है पत्थर पर और वो निकल जाती है। फिर आकाश में जाके आकाशवाणी करती है कि मूर्ख तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया है। और उसके बाद कंस क्या करता है, तुरंत बहन को चरणों में गिर जाता है और ऐसे ऐसे वाक्य बोलता है ना कि आपको लगेगा कि सो भक्त बन गया पूरा, अभी प्योर डिवोटी बन गया, बस हो गया और क्या, कुछ जरूरत ही नहीं है, परफेक्ट कॉन्शियसनेस थी उसकी। हम अगर देवकी की जगह होते तो उसको लात मार दे, जब वो चरणों में आता तो उसको पहले लात मार दे, क्योंकि सात बालकों को मारा है। और लात मारती भी देवकी अगर तो भी वो सही था, कोई उसको बोलता नहीं था कि अरे इतनी दुष्ट क्यों बन रही हूं लेकिन देवकी ने तुरंत उसको माफ कर दिया, एक भी अपशब्द उच्चारण नहीं किया उसके लिए। ये बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, इतना कष्ट जिसने दिया है वो अभी पहली बार, हम कहते ना आओ अभी इस पार, हाँ हमारे कब्जे में हमारे चरणों में आकर गिरा हुआ है, तो एक तो लात मारने का अधिकार आपको बनता है, लेकिन उसने ऐसा कोई कार्य भी नहीं किया, कोई वचन भी नहीं बोले, तुरंत माफ कर दिया उसको। तो आचार्य बताए उसका कारण क्या है, क्योंकि इतने सारे दुख का अनुभव है लेकिन उसके सामने जब भगवान के दर्शन का अनुभव होता है तो सारे दुखों का साक्षात्कार और याद जो है वो धुल जाती है पूरी तरह से। समझ में आपको है, इतने बड़े दुखों का सागर ऐसा, पर्वतों जैसा भार लेकर आप जा रहे हो और अंत में आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं और वो दिव्य दर्शन का परिणाम ऐसा है कि कोई भी दुख का साक्षात्कार हृदय में बचता नहीं है, सब मैदान साफ हो जाता है और साथ साथ परम आनंद का अनुभव होता है, परम आनंद के सागर और पर्वत भर जाते हैं, इसके सामने पुराने दुख भरे यादों को कोई स्थान ही नहीं है, ना कोई पोजिशन है उसका। तो देवकी क्यों माफ कर पाई कंस को, क्योंकि भगवान के दर्शन का यही प्रभाव है। तो हमें भी अगर जीवन में दुखों के जैसे अनुभवों से मुक्त होना है तो भगवान को हमें स्वीकार करना है, भगवान का आविर्भाव हृदय में हमको कराना है, उनके नाम के जप के द्वारा, नियमित नाम के जप के द्वारा, भक्तों की सेवा के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा। जितना इन माध्यमों के द्वारा हम भगवान को हृदय में आविर्भावित करते हैं उतना हम दुख से दूर रहेंगे, चाहे वो कितने भी अनंत दुख क्यों न हो, भगवान का आविर्भाव यही सारे दुखों का अंत का एकमेव कारण है और किसी भी अन्य देवता का आविर्भाव इन दुखों का सनाश सर्वनाश करने में सफल नहीं हो सकता है। तो ये सब जानते हैं देवता लोग और देवकी को भी आश्चर्य, इतनी नम्रता है उसकी, उसको पता है परम भगवान मेरे गर्भ में आए हैं, लेकिन बोले ये देवता लोग क्यों आ रहे हैं, ऐसा नहीं, उनको तो आना ही है, वो सब जानते हैं मेरे गर्भ में भगवान बैठे हैं तो बड़ा क्या काम कर रहे हैं, आना चाहिए उनको, प्रार्थना करना चाहिए, नहीं वो क्या सोच रही कि मुझे क्यों वंदन कर रहे हैं सब लोग, नम्रता भी साथ में उसके। तो हम सब लोगों को देवकी के चरित्र पर विचार करना चाहिए कि क्या ऐसी चीज है जो देवताओं को उनकी तरफ आकर्षित कर रही है, क्या ऐसी वस्तु है जो काल कोठड़ी जो है अंधकार मैं उसे भी दिव्य प्रकाश और आनंद से भर रही है। सब लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं, कैद में रहकर भी सब लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं, एक व्यक्ति है जो दुख का अनुभव कर रहे हैं, वो है कंस। अभी उसके भी जीवन में, उसके भी जीवन भगवान आ रहे हैं ना, नहीं आ रहे क्या, उसी जगह पर उसके ही राज्य में और उसके ही सम्मुख और उसके ही सान्निध्य में भगवान अवतार ले रहे हैं और वही उनका आविर्भाव होने वाला जो है, वो देवकी को आनंद दे रहा है, दिव्यता दे रहा है, वसुदेव को दे रहा है, देवताओं को आकर्षित कर रहा है, सब जगह पर प्रकाश आनंद का अनुभव करा रहा है, लेकिन उसी जगह पर उसी स्थिति में रहते हुए भी कंस को परम भय का अनुभव हो रहा है। क्या कारण है उसका, चेतना का अंतर है और वो चेतना कैसी है, वो आपके हाथ में है, वो हमारे हाथ में है। क्या आपको सोचना है ये हमारे हाथ में होता है, कौन सी स्थिति को किस दृष्टि से देखना है ये भी हमारे हाथ में होता है। तो विपरीत चेतना होने की वजह से कंस उसी आनंदमय चेतना में परम दुख का अनुभव कर रहा है जो भय के रूप में प्रकट हो रहा है उसके जीवन में। इतना भय कि जब देवता लोग भगवान के अप्रत्यक्ष दर्शन, यानी कि अभी दर्शन तो नहीं हो रहा है, खाली प्रकाश को ही देख रहे हैं, ये तो अप्रत्यक्ष हो गया ना, अभी तो चतुर्भुज वाले आने वाले हैं, अभी तो प्रकट नहीं हुए, उसी से ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं, सुकून का अनुभव कर रहे हैं, सुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं, भय से मुक्त हो रहे हैं। कंस बहुत भयंकर था, कहते रावण से भी भयंकर था कंस। रावण तो उस धनुष को उठा नहीं पा रहा था, कंस ने उसको उठाकर कई बार टणत्कार किया, गर्ग पुराण में उसका वर्णन दिया है कि कैसे कंस जो था वो रावण से अनंत गुना शक्तिशाली था। द्वापर से मतलब त्रेता से द्वापर में होने के बाद भी द्वापर वाला व्यक्ति जो है वो त्रेता वाले राक्षस से भी भयंकर था। ऐसा कंस जो है केवल अपनी निहित चेतना के वजह से सब आनंदमय कल्याणकारी मंगलमय प्रसंग में भी अति भयंकर भय का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हम जब दुख भोगते हैं ना तो कभी भी किसी को कोसना नहीं चाहिए, केवल हमको कोसना चाहिए। हमारा दुख जो है, हमारे जो भय का अनुभव है, जो भी हमारा असुरक्षित अनुभव करते हैं हम लोग, वो सभी केवल हमारे वजह से ही है। जैसे इस समय पर इतने मंगलमय प्रसंग पर कंस कष्ट भोग रहे हैं। एक और कथा बताता हूं आपको मैं, ये कंस की चेतना जो है वो कैसी है। अभी हम लोग सब पढ़ते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं कि वृंदावन में गोपी का जो स्थान है वो परमोच्च है। हमारा सबका लक्ष्य है वो कि हम भी कभी गोपियों की तरह बने, उनकी तरह चेतना प्राप्त करें। चैतन्य महाप्रभु भी परम कठोर सन्यासी होने पर भी स्त्री के उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं को भी देखना त्यागते थे वो, यानी कि चप्पल या ऐसे कोई वस्तु है जो स्त्री उपयोग करती है उसको भी वो कभी उसका विचार भी नहीं कर, देखते भी नहीं थे उसकी तरफ, इतने कठोर सन्यासी थे वो भी। इतने कठोर सन्यासी होने पर भी गोपियों का नाम लेकर गुणगान करते थे, यानी एक तरह से स्त्री का नाम ले रहे ना, जो उनको नहीं लेना चाहिए। तो गोपियों का जो महात्म्य है, गौरव है, वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट कर रहे हैं, रूप गोस्वामी स्वयं प्रकट कर रहे हैं और बता रहे हैं। अभी हम सब लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कभी हम कहां गोपी भरतुर पद कमलम दास दास अनुदास, कभी वो भाव को प्राप्त करें। गोपी नहीं बने लेकिन कम से कम गोपियों के दास कम से कम बनने का प्रयास करें, उनके चरण का क्या कहते हैं उसको अनुगमन करें, अनुकरण नहीं करें, उनके चरणों की दास्यता करें, उनके दिशा में चलें। ऐसा हम लोग कम से कम इच्छा तो रखते हैं और रखना भी चाहिए। और ये कंस महाराज वो तो चले गए वृंदावन से, नंदगांव चले गए, मतलब मथुरा से क्या कहते हैं गोकुल से नंदगांव बरसाना चले गए सब लोग कंस के आतंक के वजह से परेशान होकर। तो राक्षस गया तो बोला कि सर वहां पर कोई नहीं है, तो बोले हाऊ बुलाओ को भेजा, हाऊ बुलाओ को भेजा तो वो भी उनको भी नहीं मिले, लेकिन वो तो होशियार थे, थोड़े से अधिकारी थे उनके, आगे 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 चले गए नंदगांव तक। नंदगांव को देखा उनको, वो जाके स्पर्श किया तो शांडिल्य मुनि के शाप की वजह से वो पत्थर बन गए। शांडिल्य मुनि ने शाप देकर रखा था यहां पर जो भी आएगा राक्षस वो पत्थर हो जाएगा। जैसे ही नंदगांव पहुंचे तो वो पत्थर हो गए, तो वो भी लौटे नहीं। फिर क्या हुआ, मेरे सेनापति दो और उसके दो बच्चे पहुंच के वापस नहीं आए, पहले वाला वापस कोई नहीं आए, तो भी कंस बोले मैं खुद जाता हूं। और वो खुद ब्रज में, एक तो गोकुल है उसके बाद वृंदावन के अंदर, उसके बाद वृंदावन का भी एक रहस्यमय स्थान नंदगांव बरसाना है, वहां पर वो आ गया। और आप देखिए श्रीजी महारानी का प्रभाव कैसा है, जैसे ही वो आया वो तुरंत कन्या बन गया। हाँ, दिग्विजयी कंस महाराज सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, जिसके भवें भी उठाने से देवता कांपते थे, इतना बलशाली था वो, दिग्विजयी था, भयंकर भयंकर राक्षसों को लीलया यानी कि आसानी से उसने अपने वश में करके रखा था। ये सब जो राक्षस ना त्रिणावर्त अरिष्टासुर, वो उनके साथ सबके साथ उन्हें युद्ध करके उनको परास्त करके नौकर बना दिया था। इतना भयंकर वीर, जैसे ही बरसाने में प्रवेश करता है वो कन्या बन जाता है, मतलब क्या होता है वो गोपी बन जाता है। उसको भी मौका था कि चलो जीवन की परिपूर्णता तो अनायास ही प्राप्त हो गई, भगवान से द्वेष करके भी प्राप्त हो गई, लेकिन ऐसे कहा गया है कि गोपियों ने तालियां बजाई उसको देखकर, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इतना आतंक हमारे जीवन में पैदा कर रखा, हमारे ठाकुर जी के लिए इतना आतंक पैदा कर रखा है, अभी कन्या बन गए बहुत ही अच्छा हो गया। तो वो रोने लगा, तो उन्होंने क्या किया, 6 महीने तक उसके हाथों से कंडे लिपवाए। कंडे लिपवाने का पता मालूम है कैसा होता है, मतलब पहले तो गोबर इकट्ठा करना होता है गौमूत्र के साथ, गौशाला साफ करनी होती है, उसको लेकर फिर गौ ब्रज रज के साथ में मिलाकर उसके वो केक बनाने पड़ते हैं, फिर उसको कभी पेड़ पर कभी जमीन पर कभी पत्थर पर सुखाने पड़ते हैं, फिर वो सूख जाते हैं तो उसको टोकरी में इकट्ठा करने पड़ते हैं, और भर गए तो सर पे धारण करके एक जगह जाना पड़ता है जहां पर वो गोबर की एक झोपड़ी बनाते हैं हाथ का छिक्का बनाकर उसपे, और उसके ऊपर जमा करते जाते हैं, वो भर गई दूसरी बनानी पड़ती। 6 महीने तक गोपियों ने कंस से, जो अभी कंस नहीं गोपी बन गया है, उसके हाथ से ये कंडे लिपवाए। लेकिन कंस के आनंद में था क्या? तो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, हर समय गोपियों से विनती करता रहा, बचा लो मुझे, बचा लो, बचा लो, एक बार छुटवा, छुटकारा करा लो इस भयंकर अवस्था से। और वही सब काम गोपियां बड़े आनंद से कर रही है, बड़े प्रेम से कर रही है, प्रेम अश्रु बहाते हुए कर रही है। यशोदा मैया भी कर रही है, उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम के अश्रु बह रहे हैं और वही काम कर रहे हैं, और वही काम करने का परम सौभाग्य कंस को प्राप्त हुआ था। लेकिन वो रो रहा है, क्यों रो रहा है? एक तरह से आप सोचेंगे तो कंस ने तो जीवन की परिपूर्णता प्राप्त कर ली थी ना, जो हम लोगों को वो अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनंत निवृत्ति निष्ठा प्रेम आसक्ति ये सब करने के बाद में प्राप्त होती है। फिर भी बीच में गड़बड़ हो जाता है कई बार, इतनी सारी विधियों को पालन करते करते करते। उसको तो बेचारे को आते ही परम सिद्धि प्राप्त हो गई थी, केवल इतना कहना था, यस मैडम जैसी आपकी इच्छा, आज से मैं गोभी। तो उसको तो राधा रानी ने तो सुअर था ना, वो मादा सुअर, उसको भी एक क्षण के अंदर अपने पार्षद में प्रवेश दिया था राधा कुंड पे। वो भेड़िया जो थी उसको बालक लोग परेशान कर रहे थे शिव खोर पे राधा कुंड के घेरे में, उधर एक क्षण में उसके अंदर उसको अपने पार्षद में स्वीकार करके गोपी बना लिया था। तो इसको भी एक क्षण के अंदर गोपी बना दिया था। तो वो तो सुवर का मादा तो था, और वो जो भेड़िया थी वो तुरंत गोपी बनकर गोपी भाव में राधा रानी की सेवा में लग गए। और ये 6 महीने तो रोता रहा, क्या कारण है उसका? ओनली चेतना, विपरीत चेतना, यही सारे दुखों का। परम भाग्य प्राप्त होने पर भी आप परम दुखी रह सकते हो, ये इसका प्रूफ है। हम सब लोग भी, हमको परम 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 ऐसी प्राप्ति हो गई है, भगवान का नाम प्राप्त हुआ है, भगवान के दिव्य भक्त का संग प्राप्त हुआ है, उनके प्रति उनके तरफ से एक आज्ञाएं प्राप्त हो रही है, एक परम सर्वोच्च स्थान पर अपने जीवन को ले जाने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, फिर भी हम दुख भोग रहे हैं। कारण क्या है उसका? परम प्राप्ति, परम भेंट की प्राप्ति होने के पश्चात भी हम दुख क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमारी चेतना पूर्णता से सही नहीं हुई है, थोड़ी अभी भी विपरीत है। जितनी हद तक विपरीत है प्रपोर्शनेटली, उतना दुख हम भोग रहे हैं। और जैसे कंस पर भी इतनी कृपा हुई राधा रानी के द्वारा, वैसे हम पर भी हो रही है। हमने कोई घरदार छोड़ के, धन दौलत छोड़ के, धंधा छोड़ के जंगल में जाकर खोज नहीं किया गुरु का। गुरु जी हमारे दरवाजे पे आए हैं, उनके भक्तों के माध्यम से अनायास ही प्राप्त हुआ है। मैंने तो कुछ तपस्या नहीं किया है, उल्टा मैंने, मुझे कहा गया था कि पहले बार उपवास करना है तो एकादशी का सामान भरपेट खा लो। तो एकादशी के दिन भी भरपेट एकादशी का सामान खा के मैं कंबल ओढ़ के सो गया था वीकनेस की वजह से। तो कोई तपस्या वैसे किया नहीं है, सब ऐसे कहते ना वो आनंद से झूमते हुए चल रहे हैं हर समय पे, शुरुआत से लेकर। तो इतनी परम कृपा होने के बाद भी हम लोग दुखी रह सकते हैं अगर हमारी चेतना सही नहीं है तो, इसका प्रमाण कंस है। और राजा रानी ने उस पर भी कृपा की, अश्वत्थामा पर भी कृपा की, इतना भयंकर पाप जो भगवान से शाप प्राप्त है, ऐसे व्यक्ति पर भी राधा रानी ने कृपा कर दी है। तो वो कृपा हम पर भी हो रही है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या उस कृपा का पूर्ण लाभ हम ले रहे हैं? उल्टे उसके बाद 6 महीने के बाद में वो इतना गिड़गड़ाया, इतना गिड़गड़ाया कि वृषभानु महाराज को भी दया आ गई उसके ऊपर। तो वृषभानु महाराज ने राधा रानी को कहा कि भाई इसको भी माफ कर दो आप। तो अभी इतनी स्थिति आ रही है कि राधा रानी का दर्शन भी हो रहा है। अगर आपको दर्शन हो जाएगा तो क्या करेंगे आप बताइए? राधा रानी अगर अपने आप दर्शन दे रही है आपको, तो आप क्या बोलेंगे? कंस ने क्या बोला? मुझे मुक्त कर दो इस अवस्था से, मुझे रिहा कर दो इस अवस्था से। तो बोले ठीक है, कूद जा मेरे कुंड में, फिर पुरुष शरीर प्राप्त करोगे। जो परम भाग्य की प्राप्ति 6 महीने तक बनी रही उसके ऊपर, विपरीत चेतना की वजह से 6 महीना भी रोता रहा, और जब मौका मिला तो उस स्थिति से मुक्त होने का वरदान मांगा। और जैसे ही किशोरी कुंड में जावट में प्रवेश किया और पुरुष शरीर को प्राप्त किया, गीले कपड़े से वहां से लेकर मथुरा तक भागा कि बीच में कहीं महारानी का मन बदल जाए तो फिर वापस मुझे लड़की बनना पड़ेगा। और वया तो वापस कभी लौट के नहीं आया, ना कोई उसका आदमी आया धाम में, बरसाना में, नंदगांव में और जावट में। तो ये कहानी एक चेतना की कहानी है, एक कैसे है ना, ये दुख भरी कहानी है, ये वेरी सैड स्टोरी, जिसको परम कृपा के प्राप्त होने के बाद भी वो परम कृपा को ना स्वीकार कर पाया, ना उसका अनुभव कर पाया, और उसके होने के वजह से भी रोता रहा। वो परम भाग्य अभी अपना चुका है, वो प्राप्त कर चुका है, उसका अनुभव कर रहा है, फिर भी उसके वजह से रो रहा है और भय का और दुख का और परम कष्ट का और संकोच का अनुभव कर रहा है। ना जा पा रहा है अपने घर पे, ना वापस आ रहा है, ना उधर कष्ट भोग रहा है। वो सारे काम जो किए, जो हम सब लोग करना चाहेंगे राधा रानी के सेवकों के नेतृत्व में, हाँ, राधा रानी के गौशाला में आपको गोबर साफ करने को मिल रहा है, कंडे बनाने को मिल रहा है, गायों का दूध निकालने को मिल रहा है, राधा रानी की गायों का, ये परम भाग्य हमारा, वो सारे भाग्य उसको प्राप्त हुए थे। तो कंस भी वही है और देवता भी वही है, और देवता परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, कंस दुख का अनुभव कर रहे हैं। क्या पहले श्लोक में क्या वर्णन आया है, कंस अपने महल में समझ चुका था आ गया है मेरा काल, आ गया है, अब बोझी समय कुछ देरी की बात है, मुझे मरना है। तो उसको ग्लास के पानी, पानी के ग्लास में भी उसका दर्शन हो रहा है, हवा से पर्दा उड़ रहा है, तो उसको लगा अरे आ गया, वायु के रूप में आ गया। आईना में देख रहा है तो लग रहा है कि उसका शरीर नहीं है, ऐसे कई प्रकार के वर्णन दिए गए। पसीना पसीना हो रहा है, सब सैनिक दौड़ के आ रहे हैं, महाराज क्या हो गया, तो खुद को उधर है उधर है उधर है, तो महाराज को कह रहे महाराज कोई नहीं है उधर, कोई नहीं है, पर्दा खोल के दिखा देता है कोई नहीं है, ठीक है अभी पानी पी लो, पसीना पसीना हो रहा है लो पानी पी लो, पानी के अंदर भी उसको देखता है, पानी फेंक देता है, रात भर नींद नहीं है, जितने दिन गर्भ में कृष्ण यहां पर सबको आनंद दे रहे हैं उतने दिन बेचारा नींद भी नहीं प्राप्त हो रही, भोजन भी मीठा नहीं लग रहा है, मतलब ये सब क्या कहते हैं ना, सेल्फ मेड मिजरीज है, केवल चेतना की वजह से हर क्षण दिन रात कष्ट का अनुभव कर रहा है, यातना पीड़ा का अनुभव कर रहा है, आतंक का अनुभव कर रहा है खुद के ऊपर, केवल चेतना की वजह से। एक स्वीकार कर लेता कि ठीक है यही मेरे भगवान है, ये मेरे स्वामी है, आई सरेंडर टू यू, क्या कहा है त्वाम शरणम प्रपन्नः, कह देते सारा मामला वही खत्म हो जाता, जीवन का कल्याण हो जाता, लेकिन नहीं किया उसने। इसलिए अभी हमारा प्रश्न उठता है कि ऐसी चेतना फिर प्राप्त कैसे करें, ऐसी चेतना प्राप्त करने के लिए ऐसी चेतना वाले भक्तों का संग करना है, थोड़ा अहम को छोड़ देना चाहिए कि आई नो बेटर देन हिम व्हाट ही विल टीच मी, वो छोड़कर थोड़ा सा नम्र होकर, ज्यादा नम्र होने की जरूरत है शुरुआत में, थोड़ी सी नम्रता लेकर ऐसी चेतना वालों का संग करना चाहिए। जैसे ही आप नम्रता से ऐसी चेतना वाले लोगों का संग करते हैं, वो चेतना आपके अंदर भी प्रवेश करने लगती है। कैसे चेतना प्रवेश करेगी, जब हमारा हृदय का भाव नम्र रहेगा तो अपने आप ही वो चेतना प्रवेश करेगी। देवताओं के अंदर वो भाव है, इसलिए उनको अनायासी उस चेतना का लाभ हो रहा है। बड़ी गलतियां कर रहे हैं वो भगवान के साथ, कभी कभी प्रणाम नहीं करते हैं, कभी भोग में लगे रहते हैं, कभी विष्णु की माला ठुकरा देते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के लिए उनके पास अनुकूल चेतना है, क्योंकि वहां पर भी नारद मुनि, अंगिरा मुनि और बहुत सारे मुनि आकर संग देते रहते हैं, उसका संग लेते रहते हैं, वो चाहे कितने भी भोग में लगे होंगे। तो हमें यही देखना है, अल्टीमेटली सारा खेल जो है ना वो चेतना का है। चाहे आप सारे शास्त्रों से पारंगत हो गए हो, या आपको कुछ भी पढ़ने को नहीं आता है, ना एक भी श्लोक का अर्थ समझता है, या आपने बहुत सारे व्रत कर लिए हो, या आपने कोई भी व्रत नहीं किया हो, ऐसे भक्ति के विषय में आपके यहां से वहां हो सकते हो आप, लेकिन फाइनल रिजल्ट किससे आएगा, वो चेतना से आएगा। आपने कितना भी पढ़ाई किया हो, लेकिन फाइनल आपने एग्जाम में क्या लिखा उस पर आपको मार्क मिलेंगे, उससे आपका आगे का भविष्य तय होगा। उसी प्रकार से अंत काले च मामेव, वो चेतना आपके अवर है जिसके लिए आपने मेहनत किया है, उस चेतना को प्राप्त करने के लिए अनुकूल्य संकल्प वो आपने अगर किया है, तो भले आप रास्ते में कितनी बार भी अपयशी हो गए हो, अंतिम यश निश्चित है। रास्ते में तो अपयश आ सकता है, आप गिर सकते हो, फिसल सकते हो, इंजोर हो सकते हो, फिर उठ के चल रहे हो, संतों का हाथ लेकर चल रहे हो, रास्ते में बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, उसका रिकॉर्ड अंतिम स्थिति में आपका कोई उसका मायना रखेगा नहीं। अंतिम स्थिति में क्या इंपॉर्टेंट है कि आपकी चेतना क्या है, फाइनल रिजल्ट आपके चेतना के द्वारा प्रकट होगा और उसी चेतना को देखकर उसका रिजल्ट दिया जाएगा आपको। तो सोचा मैंने इसी पर विचार किया था इस बात पर कि फाइनली सारी हमारी भक्ति 64 राउंड 16 माला 32 माला एकादशी की 25 माला और ये नहीं खाया वो नहीं खाया रात भर कीर्तन किया जो भी कुछ हमने किया है उसका परिणाम अंतिम चेतना है। वो चेतना अगर प्राप्त करते हैं हाँ ऋणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मार्त मानदे न कीर्तनीय सदाहरि। ये अगर हम प्राप्त करते हैं इन सभी चीजों के माध्यम से सभी प्रतिकूल चीजों को छोड़कर जैसे कि ये मुझे अच्छा लगता नहीं वो उसने ऐसा क्यों बोला उसने मुझे मेरी सेवा छीन लिया उसने मुझे मौका नहीं दिया वो पहले दर्शन करने गया मुझे पीछे रखा ये सारी जो बेफजूल की बातें हैं इसको छोड़कर केवल सार के विषय में अगर हम क्या कहते हैं उसको उत्सुक रहेंगे लालायित रहेंगे सार क्या है वो चेतना जो भगवान को अच्छी लगती है उसको ग्रहण करने में उसको प्राप्त करने में हम लगे रहेंगे तुम्हारा जीवन आज भी धन्य है कल भी धन्य रहेगा परसों भी रहेगा अंत में भी धन्य रहेगा। ये अवस्था तो आज आप प्राप्त कर सकते हैं अंत में तो अंत की बात है लेकिन आज आपके हाथ में जो है वो आज आप प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों के संग में नम्र रहना चाहिए उनके प्रति कोई द्वेष नहीं करना चाहिए उनका अपराध नहीं करना चाहिए उनकी सेवा में रखना चाहिए भगवान के नाम का जप बड़े प्रेम से ध्यान पूर्वक लगन से करना चाहिए इसी से सारी प्राप्ति आपको हो जाएगी। प्रभुपाद जी का मैसेज बहुत सिंपल है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं सिद्धांतिक कहते नाम का जप करो नाम को जीवन का सर्वस्व बनाओ भक्तों की सेवा करो उनका अपराध मत करो बस इतना कार्य करने से जो गोपियों की चेतना है वो हमको और आपको मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ सकते हैं अगर समय हो तो एनी क्वेश्चन यस प्रभु जी
हरे कृष्ण गुरु जी जब कंस को गोपी बनने का अवसर मिला था तो वो तो श्रीमती राधा रानी को एसोसिएट कर रहा था इतनी बड़ी बड़ी डिवोटीज से एसोसिएट कर रहा था तो इतने
प्रवृत्ति गलत है ना उसकी वही तो मैंने समझाया पूरा कि इतना परम भाग्य प्राप्त होने पर भी प्रवृत्ति जिसकी गलत होती है जिसकी धारणा गलत होती है उसका लाभ नहीं ले पाता है एक दीवाल की तरह है आप अमृत में भी डुबकी लगा रहे हो लेकिन एक ऐसी दीवार लेके डूब रहे हो कि अमृत का स्पर्श भी होने रहे हैं। और वो प्रवृत्ति 100% हमारे हाथ में होती है। कभी भी कंस को प्रवृत्ति बदलने का मौका था उस 6 महीने में और पूरा जीवन का उसका चरित्र जो है बदलता था आज संतों के रूप में उसकी हम चर्चा करते हैं उसका मौका तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों को भी भगवान और राधा रानी मौका देती है। कौरवों को दिया था कि नहीं मौका भगवान ने इतना पाप किया उन्होंने फिर भी भगवान ने उनको एक लास्ट में भी दूध बंद कर जाकर मौका दिया। तो भगवान सबसे पापी से पापी व्यक्ति को भी मौका जरूर देते हैं लेकिन वो उसका लाभ नहीं उठाते हैं ना उठाना चाहते हैं अपनी प्रवृत्ति को बनाए रखते हैं इसलिए उनको दुख भोगना ही है उनका विनाश होना ही है। सो हम लोग अभी प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण बलराम से और राधा कृष्ण भगवान से कि जब ऐसे मौके आएंगे तो मेरा प्रवृत्ति ठीक रहे गलत न रहे मैं बड़ा पापी हूं और पतित हूं लेकिन भगवान मैं प्रार्थना करता हूं कि जब आप मुझे मौका देंगे कृपा करके मुझे सही प्रवृत्ति में रहने का प्रेरणा दीजिए आई बेग यू मैं भीख मांगता हूं आपसे कि मुझे ऐसे कंस जैसे लाभ मिलने पर भी दुर्भाग्य होने का चांस मिलना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो।
हरे कृष्णा तो हम सब प्रोजी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रोजी ने बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से हमें भगवान की लीला श्रीमती राधा रानी की कथा और फिर अंततः ये बताया कि किस प्रकार से हमारी चेतना बहुत ही उद्भुत होनी चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो प्रभु जी से निवेदन है और प्रभु जी से प्रार्थना है कि हम सब भक्तों को आशीर्वाद दे, कि हम सबके अंदर भी भक्ति के कुछ गुण आ सके। और इनसे निवेदन है कृपया करके जब भी दिल्ली आगमन होता है तो अपने संघ से हम सबको लाभ प्रदान करें। हरे कृष्ण।